ठीक राह पे लाना है तो स्वयं भी बहुत अच्छा स्वमान का अभ्यास करें, उनके विचारों को भी सुने, उनके विचारों को फाइनली कैंसिल न कर दें, सुने, उसमें आप कुछ करेक्शन दे सकते हैं और वो करेक्शन भी बहुत अच्छी भावनाओं से, ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि आप उनकी बातों को रिजेक्ट कर रहे हैं। उनकी बातों को सम्मान देते हुए उन्हें अच्छी बात सिखाएंगे तो जनरेशन गैप होते हुए भी, विचारों का बहुत बड़ा डिफरेंस होते हुए भी वो आपको सम्मान देंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर वो गलत राह पे जा रहे हैं तो उन्हें रियलाइज होगा कि दे आर रॉन्ग। तो ये स्वमान की प्रैक्टिस, उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखना, आदेश नहीं। आजकल आदेश का जमाना नहीं रहा, आदेश तो छोटे आपको देंगे, है या नहीं? वो आदेश देंगे, पापा सुधर जाओ, आप भी तो करते हो ये काम। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो हर चीज को बहुत सेंसिटिवली, बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है, इसलिए अगर आप में थोड़ी सी भी कमी है वो उन्होंने नोट कर ली है और समय आने पर वो आपको बताएंगे अच्छी तरह से। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास किया जाए, स्वमान, आत्मिक दृष्टि, बहुत अच्छा उनके लिए प्यार, शुभ भावनाएं, तो वह बात भी सुनने लगेंगे और ये जो डिफरेंस है इसमें कहीं ना कहीं हार्मनी आ जाएगी।
वेरी वेरी थैंक्स
ब्रोवर जी। के साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा प्रता जी, जो मेल्स इसी से रिलेटेड आते हैं और शायद यहीं से शायद धारा जी ने भी ये बात रखी थी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं उन्होंने स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया है या फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है, हमें बोलना भी है उन लोगों को और साथ ही आदेश भी नहीं देना है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि किस ढंग से उन्हें कहें, क्योंकि गलत उन्हें हम करते हुए देख भी नहीं सकते हैं और साथ ही बोला गया तो वो विस्फोट भी हो जाता है। तो यहाँ पे एक बैलेंस वाली स्थिति कैसे आए, यहाँ पे थोड़ी पेरेंट्स थोड़े से कंफ्यूज होते हैं।
इसमें भगवान ने जो अपनी टीचिंग्स हमें दी हैं कि अगर तुम स्वमान में स्थित होकर मैं आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ और ये बच्चा भी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, इस दृष्टि से उन्हें हम कुछ कहेंगे तो प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, इससे हमारे बोल में प्रभाव आ जाता है। हमारे बोल में यदि ईगो है, हमारे बोल में यदि क्रोध है, हमारे बोल में यदि प्रेशराइज करने की फीलिंग्स हैं, वो भी वाइब्रेशंस दूसरों को जाएंगे। उसे छोड़कर स्वमान, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस और वो आत्माएं हैं, ये दृष्टि रखते हुए यदि हम बोलते हैं तो बोल में प्रभाव आ जाता है, तब ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बोलेंगे और बच्चे ज्यादा समझेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रता जी। परिवार में समरसता हो हमारी बहुत सारी ऐसी शामना रहती है। शुक्रिया ग्रोवर जी आपका भी। जी अगला प्रश्न किस प्रदेश से आ रहा है हमारे पास?
मेरा नाम मोहन है, विशाखापट्टनम से आया है, आंध्र प्रदेश। यूथ ऐसे खराब हो रहा है, 15 साल 20 साल के अंदर जो लड़का लोग है घर से निकालते हैं एक बैग में, माता जी थोड़ा किताब लेकर आएंगे दोस्त के पास जाएंगे, फिर रास्ता में मिलते हैं 3-4 बैठ करके, ऐसे खूब स्पीड में चलता है, अगर बताने से मानता नहीं है, ये हाल चाल है। और एक्सीडेंट हो गया तो खुद कुछ वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, रास्ते में जाने आने वाला को उनसे नुकसान ज्यादा होता है इनसे। मतलब यूथ है ना, ये भी वो भी है, कपड़ा पहने के दांचा से दूसरा को मन का बुद्धि बर्बाद हो रहा है,
मतलब कपड़े ठीक ठीक पहने। अच्छा,
मेरा नाम अपराजिता, मैं बॉम्बे से हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि आजकल के पेरेंट्स प्रेशराइज करते अपने बच्चों को एग्जाम्स के टाइम कि 4 घंटे लगातार पढ़ो, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 45 मिनट्स ही बच्चे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या समाधान आप देंगे?
जी दत्ता जी, एक तो प्रश्न ये था कि भाई बच्चे नहीं सुन रहे हैं, दूसरे बच्चों के मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि पेरेंट्स खूब दबाव डालते हैं कि तुम बैठ के पढ़ते पढ़ते रहो।
मुझे कहानी याद आ गई, सच्ची घटना हमारे ही परिवार की है। हमारी भतीजी एमएससी कर रही थी फिजिक्स, तो उसकी मम्मी भी उसे बार बार कहती थी क्या तुम पढ़ती नहीं, टीवी देखती रहती है। आखिर वो भी झुंझला के कहती थी कि मम्मी एग्जाम मुझे देना या तुम्हें, मैं पढ़ लूंगी। वो ज्यादा नहीं पढ़ती थी और जब रिजल्ट आया तो उसको गोल्ड मेडल मिला फिजिक्स में यूनिवर्सिटी में। तो देखिए ये ऐसी चीज है, जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं उन्हें रात दिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। माँ बाप को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि सारा दिन पढ़ने से कुछ ज्यादा नंबर आ जाएंगे बच्चों के, ये मान्यता गलत है। जैसा इसने कहा कि 45 मिनट्स, ये बिल्कुल सत्य है कि 45 मिनट्स तक हमारा ब्रेन बहुत एफिशिएंट है, बड़ा एक्टिव है, जो कुछ बच्चा पढ़ रहा है वो ब्रेन उसको ग्रहण कर रहा है। 45 मिनट के बाद ब्रेन भी थक जाता है, फिर जो कुछ पढ़ेगा उसे आधा ग्रहण करेगा, और अगर उसके बाद भी पढ़ रहे दो घंटे के बाद फिर 1/4 ही ग्रहण करेगा। इसलिए एक बहुत सुंदर विधि है कि 45 मिनट के बाद अब सब कुछ रख दो, रिलैक्स, 5 मिनट मेडिटेशन कर लो, हो सके तो 5-7 मिनट घूम फिर लो, फ्रेश करो अपने को, कुछ खा पी सकते हैं, और फिर पढ़ाई पढ़ो, फिर चलो 1 घंटा पढ़ लो, फिर ऐसे ही अपने को फ्रेश करो, फिर ब्रेक दो, मेडिटेशन करो, और अपने को अच्छे संकल्प दो, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरे पास बहुत सुंदर बुद्धि है, फिर स्टडी करो। रात दिन पढ़ते रहने से कुछ ज्यादा फायदे नहीं होते, इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को भी कहूंगा अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाएं, जिसको दूसरा शब्द हिंदी में देते हैं किताबी कीड़े नहीं, क्यों किताब लिए बैठे हैं। कई तो माँ बाप ऐसा कर देते हैं, चाय का थर्मस रख देते हैं पास में, खुद भी मम्मी बैठ जाती है, उसको नींद आ रही है, फिर एक लगाएगी, चाय पी और पढ़। इससे कभी मनुष्य को सफलता नहीं होती। मेरे पास ऐसा केस आया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बच्ची इतना घबराई हुई थी, लड़की 10वीं क्लास की, तो मैंने जब बात की खुलकर तो पता चला कि मम्मी चाय लेके बैठ जाती है, उसको नींद आती है, एक मारती है, चाय पी फिर पढ़। अब बच्ची घबराई हुई, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने उस माँ को कहा, तुम बच्ची को मार देना चाहती हो या इसको पढ़ाना चाहती हो? ये गलत तरीके हैं। हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, सभी बच्चे कोई टॉप क्लास नहीं करेंगे। आप हर एक की बुद्धि को देखते हुए उनसे एक यथार्थ मेहनत करानी चाहिए, और बच्चे खुद भी समझते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ प्रेशर है वहाँ विवेक शक्ति में पतन होता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा खुला भी, उन्हें टीवी भी देखने दो, भले एग्जाम भी चल रहा है 15 मिनट देख लेने दो, फ्रेश होगा ब्रेन, रिगेन करने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्हें वॉकिंग भी कराओ थोड़ी बार, घूम के आओ जाओ आधा घंटा, तो ब्रेन इतना अच्छा हो जाएगा कि जो 4 घंटे में पढ़ के उन्हें याद करना है वो 2 घंटे में पढ़ के वो याद कर लेंगे। इन चीजों का पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, और अपने बच्चों का गुड फ्रेंड बन जाना चाहिए, उनकी हर चीज को समझते हुए, प्रेशर से नहीं, उनके इंटरेस्ट को जागृत करके उन्हें होशियार बना देना चाहिए।
जो पेरेंट्स है सुन रहे होंगे आज का प्रोग्राम, तो जरूर अब आप पे प्रेशर नहीं डालेंगे और आपको आनंद से पढ़ने देंगे। लेकिन एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा मैं विशेष, क्या केवल एग्जाम के समय ही आप बैठ करके पढ़ते हैं या सारे साल आप आनंद पूर्वक पढ़ते हैं, क्या रहता है आपका शेड्यूल?
मैं पूरे साल मतलब पढ़ती हूँ आनंद पूर्वक।
जी जी जी, चलिए यही कीजिएगा तो लास्ट में पेरेंट्स को दबाव डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
हाँ, साथ में मैं एक चीज और जोड़ देना चाहूंगा फॉर पेरेंट्स, एग्जाम के समय बच्चों को अच्छी नींद करा देनी चाहिए, कम से कम 6 घंटे। ये नहीं कि तुम कम सो व पढ़ो, उससे उनकी मेमोरी पावर वीक हो जाती है, और जब वो पेपर देखेंगे ना, बहुत कुछ जो याद किया वो भूल जाएगा। इसलिए बिल्कुल फ्रेश होकर वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, ये भी पेरेंट्स को ध्यान रखना है।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया लता जी। जी, अगला प्रश्न कौन पूछ रहा है?
मैं पूर्णिमा ठक्कर बॉम्बे से हूँ। मेरा प्रश्न है, ये यूथ और पेरेंट्स के लिए कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि यूथ कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या मीट में जाते हैं तो उनको पहले ड्रिंक्स दिया जाता है। यूथ भी समझते हैं कि ड्रिंक्स अच्छी चीज नहीं है, फिर भी ये जो कस्टम गिरी है कि थोड़ा सा कर्टिसी के लिए लेना ही पड़ता है, तो एक समस्या ये है। और दूसरी समस्या पेरेंट्स के लिए ये है कि समझो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा प्रोग्रेस में आगे हो जाता है और दूसरा थोड़ा पीछे रहने से पेरेंट्स कैसे हैंडल कर सकते हैं ये सिचुएशन, तो समाधान मुझे आपसे ही मिलना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम में बड़े से बड़ी इन्हें अच्छे से अच्छी सॉल्यूशन मिलती है, तो इसकी आप क्या सलाह देंगे?
हाँ, ये ड्रिंकिंग की और भी जो सारे व्यसनों की आदत युवकों में बढ़ती जा रही है, ये तो सचमुच उनके जीवन के लिए, हेल्थ के लिए, उनके भविष्य के लिए, कैरियर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस तरह मैं यहाँ से कहना चाहूंगा अपने सभी युवा भाई बहनों को कि इन चीजों से बचें, क्योंकि इनका ब्रेन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये जो हमारी एक रस्म जैसी बन गई है ना पार्टियों में या भिन्न भिन्न जगह पर, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, और जो समाज के निर्माता हैं उन्हें भी इस पर ध्यान देना चाहिए। यद्यपि युग बदल गया है और आधुनिक समय में ये सब फैशन बनता जा रहा है, इसके बिना लोग समझते हैं शायद हम पीछे हैं, हम बैकवर्ड हैं, इन सब बातों से ऊपर उठकर मैं कहूंगा कि युवक इन व्यसनों से पूरी तरह बचें। देखिए, हम लोग भी बहुत जगह जाते हैं, लोग ऐसी चीजें पेश करते हैं, हम हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं भाई ये हमारा सब कुछ नहीं है। अपने को स्वयं सेफ करना है, ये नहीं कि सब गंदगी में जा रहे हैं तो हम भी गंदगी में जाएं, कुएं में लोग गिरते जा रहे हैं हम भी गिर जाएं, हम तो बचते हैं ना, जब हम देखते हैं इससे हमारा नुकसान हो रहा है। मैं सभी युवकों को याद दिलाना चाहूंगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है बहुत सुंदर, हम सभी देव कुल की आत्माएं हैं, भारत में विशेष रूप से देवी देवताओं का यहाँ साम्राज्य था, यहाँ देवी देवताओं का वास था, हम देव कुल के हैं, इसलिए ये व्यसन हमारी चीजें नहीं हैं। रोज सवेरे उठकर सभी युवक इनको याद किया करें, क्योंकि ये ऐसी समस्याएं बनती जा रही हैं विद्यार्थियों के बीच में जो सचमुच बड़ी घातक हो रही हैं, बहुत घातक। युवक इसके कारण सुसाइड कर लेते हैं, माँ बाप को बहुत परेशानी होती है, इसलिए युवक अब मैं चोर बने, उन राहों पर न चलें जिन पर उनके दूसरे साथी चल रहे हैं। अपने कैरियर को सुंदर बनाना, अपने भविष्य को ब्राइट बनाना, ये हरेक के अपने हाथ में है। रही बात किसी माँ बाप को दो बच्चे हैं, एक बहुत होशियार, एक बहुत प्रोग्रेसिव, दूसरा बहुत ढीला ढाला, स्पिरिचुअलिटी हमें ये कहती है कि सभी आत्माएं हैं, सबका पार्ट अलग अलग है। कुछ परिवार ऐसे भी देखे जाते हैं, चार लड़के हैं, चारों ही बहुत योग्य हैं, बहुत होशियार हैं, चारों ही टॉप कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है दो बच्चे बहुत योग्य, दो थोड़े ढीले ढाले, दो की पढ़ाई में रुचि तो तीसरे चौथे की, किसी की म्यूजिक में रुचि है, किसी की डांसिंग में रुचि है, किसी की सिंगिंग में रुचि है, तो कोई क्रिकेटियर बनना चाहता है। तो माँ बाप को इस चीज को समझते हुए जैसी जिसकी कैपेबिलिटी, जैसी जिसकी रुचि, उस अनुसार ही उनको उस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरे तो चारों बच्चे इंजीनियर ही बने, एक यदि म्यूजिशियन बनना चाहता है उसको बनने दे। एक ऐसे केस आया था, मैंने पूछा उस बच्ची से तुम क्या बनना चाहती हो, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ, मुझे उसी में रुचि है, और ये मेरी मम्मी कहती है नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, वो है तो वो भी अच्छा पर मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने देखा वो एंजॉय करती है पेंटिंग को, तो उससे उसका भविष्य सुंदर होगा, क्योंकि जीवन उसको जीना है, माँ बाप केवल उसके सहायक हैं, सहयोगी हैं। तो इस तरह अपने बच्चों को अच्छी तरह देख कर परख कर जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, जहाँ उनकी उन्नति होगी, उधर जाने में उनको सहयोग करना चाहिए।
प्रता, थैंक यू।
प्रता जी, इसमें जैसे मिसेस ठक्कर का प्रश्न था, इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा मैं क्लेरिटी के लिए, जो बच्चा सफल नहीं हो पा रहा होता है ना, उसमें बहुत हीन भावना आने लगती है। बड़ा भाई मान लीजिए बहुत हर फील्ड में बहुत एक्टिव है, आगे है, ये हीन भावना से ग्रस्त होता चला जाता है, पेरेंट्स विशेष करके कैसे उसे उठा लें?
हाँ, पेरेंट्स को उसको उमंग उत्साह दिलाना चाहिए, और विशेष रूप से निगेटिव बातें उसको बोलनी नहीं चाहिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, कभी कभी उसकी महिमा करेंगे, ये बच्चा बहुत अच्छा है, अरे तुम तो डल हो बिल्कुल, तुम कोई काम के नहीं, पता नहीं तुम क्या करोगे जीवन में, तुम तो हमारा नाम बदनाम कर दोगे, ये सब नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने देखा एक को दो बच्चे थे, एक पढ़ने लिखने बहुत होशियार, तो दूसरे को बिजनेस की ओर रुचि, उसके फादर का बिजनेस था तो उन्होंने उसको सहयोग दिया कि हाँ तुम हमारा बिजनेस संभालना, तुम बहुत योग्य हो, तुम हमारा बिजनेस संभालोगे और बड़ा बच्चा ऑफिसर बनकर हमारा नाम रोशन करेगा। तो देखा दोनों आगे बढ़ गए। तो पेरेंट्स का यहाँ कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों में हीन भावना ना आने दें, उनको उमंग दिलाएं, उनकी महिमा करें, उनको अप्रिशिएट करें और घर का माहौल भी ऐसा बना दें कि किसी के मन में भी हीन भावना आए नहीं, सब अपने अपने फील्ड में एकदम आगे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
आशा करता हूँ विशेष ठक्कर आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा।
ये शायद हर पेरेंट्स की समस्याएं हैं एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पेरेंट्स आई थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला प्रश्न कौन कर रहा है?
मैं मुंबई डोमली से आई हूँ और वैजयंती रावत मेरा नाम है। मेरा क्वेश्चन है, जब भी हम योग लगाते हैं तो बाबा पे बहुत एकाग्रता नहीं होती है, व्यर्थ संकल्प बहुत ज्यादा आते हैं, बीती बात ज्यादा याद आती है, तो समाधान सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है फिर भी एकाग्रता नहीं होती है, तो उसके लिए थोड़ा
पहले तो एकाग्रता न होने का एक छोटा सा कारण मैं सभी बहनों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, है तो सबके लिए, कि अपने अंदर व्यर्थ ज्यादा न लाएं, व्यर्थ के लिए रुचि न रखें, नहीं तो क्या होता है बुद्धि में व्यर्थ बहुत भर जाता है। तो जब भी आप योग में बैठेंगे, मन को शांत करेंगे, वो व्यर्थ जागृत हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करने देगा। इसलिए जिसको अच्छे योग का अनुभव करना है वो व्यर्थ से बचे। जब आप योग अभ्यास करें तो मैं एक छोटी सी विधि आपको बता रहा हूं और ये एक बहुत सुंदर सीक्रेट सभी योग अभ्यासी याद रखें कि हमारे मन में क्रिएटिव एनर्जी है। कभी कभी योग अभ्यास करने वाले क्या करते हैं, योग में बैठे शांत, वो शांति 5 सेकंड रहेगी बस, फिर मन इधर उधर भटक जाएगा। इसलिए योग में आप बैठो, विजुअलाइजेशन, आत्मा के स्वरूप को देखना और उस पर चिंतन करना प्रारंभ कर दो। तो क्योंकि मन में क्रिएटिव एनर्जी है, मन में थिंकिंग पावर है, पावर ऑफ चर्निंग है उसमें, तो मन से जैसे ही आप सुंदर विचार करने लगेंगे और सब विचार धीरे धीरे लोप होने लगेंगे। कैसे शुरू करें? मैं आत्मा शांत हूं, अपने को विजुअलाइज करें, मुझसे शांति की किरणें फैल रही हैं। 10-15-20 सेकंड इसमें बिता दें, भले एक दो बार संकल्प रिपीट कर लें। फिर मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। बाबा से बात करें, बाबा आपने मुझे बहुत सुख दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरा संकल्प कर लें, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। फिर आत्मा को देखें, मुझसे पवित्र किरणें फैल रही हैं, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ। फिर आत्मा को देखें, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मुझसे शक्तियों की किरणें निकल रही हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। इस तरह शुरू करें, संकल्प क्रिएट करें, तो हमारे ये सुंदर संकल्प व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। और एक चीज विशेष मात्र शक्ति को मैं और कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं तो 10-10, 15-15 मिनट जो माताएं घरों में रहती हैं, 10 मिनट 3 बार योग अभ्यास में बैठें और इस तरह के चिंतन के साथ योग अभ्यास करें, तो इससे क्या होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। और जब मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है तो एक विशेष तरह का आनंद मन को प्राप्त होता है जो हमें योग अभ्यास करने के लिए प्रेरित करेगा। टाइम नहीं भी होगा ना, हम टाइम निकाल के बैठेंगे क्योंकि वो आनंद हमें खींचने लगेगा। तो सुंदर संकल्प क्रिएट करें, व्यर्थ से बचे रहें और 3 बार अवश्य ऐसा बैठकर योग अभ्यास करेंगे तो बहुत सफलता होगी और व्यर्थ का प्रकोप नष्ट होता रहेगा।
थैंक यू भैया।
चलिए वैजयंती जी, हमारी शुभकामनाएं, आपका योग बहुत अच्छा हो, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो, तो समाचार जरूर भेजिएगा कि हाँ मेरा योग बहुत अच्छा होने लगा, ठीक है? और मुंबई से मिठाई भी भेज दीजिएगा।
ओके ओके, थैंक यू,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अगला प्रश्न कौन पूछने वाला है?
सर नमस्ते, मैं शिवार्षण त्रिपाठी सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर मैं आपका कार्यक्रम कई दिनों से देख रहा हूँ, सर मुझे कार्यक्रम बहुत पसंद है। सर आज जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये मेरा इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है, ये यूथ की आवाज। सर हम यूथ पढ़ाई में आजकल हर जगह कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके लिए हमें ज्यादा समय अपने पढ़ाई देना चाहिए। पर आज कल जैसा आपने बताया कि हमें 10-15 मिनट घूम लेना चाहिए, पढ़ते समय पढ़ लो, घूम लो, टीवी देख लो। लेकिन सर आजकल ये ट्रेंड चल चुका है, ये ट्रेडिशन चल चुका है, सर हमसे ज्यादा समय कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट में देते हैं, और अगर थोड़ा बहुत समय बचता है सर 10-15 मिनट पढ़ लो। सर इसके लिए आप क्या इसके लिए आप सर कुछ ऐसे हिंट्स, कुछ सोल्यूशन दीजिए सर, जिसमें हमारा ज्यादा टाइम फोकस पढ़ाई में हो।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके दूसरे भी नुकसान बहुत हो रहे हैं कि व्यक्ति सोशल लाइफ से दूर होता जा रहा है, और उसको जो कुछ सीखना चाहिए था, और बड़ी चीज जो जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, उससे भी वो वंचित होता जा रहा है, और उसका ब्रेन पर बहुत बुरा इफेक्ट इस तरह भी आता है। जैसे बहुत सारे युवक बताते हैं कि टू मेनी इन्फॉर्मेशन मिलने से मन में कंफ्यूजन बहुत होने लगता है, ये राइट है या ये राइट है। और अगली बात क्या है कि कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ रहने से उसे बैड एनर्जी जो निकलती है वो ब्रेन पर एक बुरा प्रभाव भी डाल रही है। तो बहुत विद्यार्थियों को आजकल क्या हो रहा है कि पढ़ाई में रुचि खत्म होती जा रही है, या पढ़ लिए एग्जाम देने की इच्छा नहीं हो रही है, और भिन्न भिन्न तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा, क्योंकि जो कुछ वो उन चीजों में देख रहे हैं मोबाइल से या इंटरनेट से या टीवी से जो कुछ उन्हें मिल रहा है उस अनुसार उनकी मेंटेलिटी बनती जा रही है। इसलिए मैं अपने सभी युवकों को कहूंगा, आपने प्रश्न सबकी ओर से पूछा है कि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उससे ही किसी का भविष्य सुंदर होता है। इन चीजों में ठीक है ये विज्ञान के वरदान भी हैं, और इनसे हम बहुत कुछ अच्छी चीजें सीख सकते हैं, जान सकते हैं। नहीं तो आजकल जैसे नशा मुक्ति केंद्र खुले थे ना, इंटरनेट मुक्ति केंद्र भी खुलने प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि बच्चे युवक फिर वो गलत साइट पे चले जाते हैं और चरित्र उससे उनका नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं सभी को यह संदेश देना चाहूंगा कि एक लिमिटेड टाइम इन सब के लिए दें, और जो आपकी पढ़ाई है, जो कोर्स है, जो सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें, क्योंकि मनुष्य की जो एकाग्रता है वो एक ही तरफ होती है। एकाग्रता शब्द ही इसलिए बना है कि एक ही चीज की तरफ वो जाएगी। अगर लैपटॉप में किसी विशेष फील्ड में वो एकाग्रता चली गई तो दूसरी तरफ से वो एकाग्रता भंग होने लगेगी। इसलिए सभी युवक पहला ध्यान, पहला समय, पहला अपना संपूर्ण एनर्जी अपनी पढ़ाई पर दे।
दादा जी एक चीज इसमें ये है कि जब व्यक्ति इसे यूज करना शुरू कर देता है ना, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है यूथ को, आप इंटरनेट यूज करना शुरू करते हैं आपको टाइम का पता नहीं चलता, आप फटाफट एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे चले जाएंगे, मोबाइल यूज कर रहे हैं, फोन कॉल्स हैं, SMS हैं, तो इसमें समय बहुत जाता है। ये रुचि इसमें है, स्टडी में क्यों नहीं?
देखिए मोबाइल करते करते तो लड़कियां गड्ढों में गिर गई, वो इतना सुनने में मस्त हो गई बात करने में कि आगे सिवरेज का गड्ढा भी था वो उन्होंने देखा ही नहीं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये सब केस भी आजकल हो रहे हैं। इसलिए इसको व्यसन न बनने दें, अन्यथा इसका उन व्यसनों से भी बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। देखिए उन व्यसनों से तो किसी का लीवर खराब होता है, किसी की किडनी डैमेज हो जाती है, किसी का और कुछ, पर इसका इफेक्ट तो मनुष्य के ब्रेन पर पड़ता है, उसकी नींद पर पड़ता है, और फाइनली उसकी पूरी हेल्थ पर पड़ जाता है। और मैंने देखा ऐसे जो युवक हैं उनका जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है, 30-35 साल की आयु तक जाते जाते विक्षिप्त अवस्था हो जाती है मन की, तो फिर वो न जीवन को एंजॉय कर सकते, न किसी प्रोफेशन को, और न फिर वो एक्चुअली इंटरनेट को भी वो फिर एंजॉय नहीं कर पाते हैं।
तो क्या सजेस्ट करेंगे ब्रदर जी? मैं इनकी तरफ से ही पूछ रहा हूँ कि यदि अपनी दिनचर्या में हमें इन्हें समय देना है, वक्त देना है, क्योंकि कई बार लगता है कि हम अप टू डेट रहें, समाज में क्या हो रहा है, क्या क्या जानकारी, इन्फॉर्मेशन आदि भी हमें चाहिए होती है, कैसे हम इसे डिवाइड करें आपके विचार?
देखिए वो जानकारी ली जा सकती है और लेनी भी चाहिए, लेकिन उसके लिए इतना समय देने की जरूरत नहीं, इससे तो अच्छा है ये समय बचाकर थोड़ा मेडिटेशन करें ताकि इनर पावर बढ़े, विल पावर बढ़े, बौद्धिक शक्ति बढ़े, बुद्धि डिवाइन हो और पढ़ाई लिखाई में बहुत हम अच्छे हो जाएं और सोशल लाइफ भी हमारी बहुत अच्छी हो जाए। तो मैं तो ये कहूंगा इस रुचि से थोड़ा हटकर और थोड़ी रुचि स्पिरिचुअलिटी की ओर दें। आज समाज में क्या हो गया, एक लहर ऐसी हो गई है कि लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। इससे मेटेरियलिज्म और उसमें ये इंटरनेट मोबाइल इन सब का फैशन बढ़ गया है और मनुष्य को पता नहीं कि इससे वो एक भयानक विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया बताइए त्रिपाठी जी, क्लियर है आपको?
यस सर।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रश्न के लिए। जी अगला प्रश्न।
नमस्ते, मेरा नाम गणेश है, गुजरात जामनगर से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन है, आजकल जो बीमारी बढ़ी है मानसिक और शारीरिक बीमारी जैसे कि बीपी, शुगर, हार्ट पेशेंट, वो दवाई के बंदिश हो गए हैं, तो राज्यों के अभ्यास द्वारा हम क्या उस पे समाधान हो सकता है, दवाई और बीमारी से छूट सकते हैं?
बीमारियां सचमुच बहुत बढ़ रही हैं, चाहे मानसिक हो शारीरिक हो। और एक चीज बता दी, कई बार मैंने आपसे पूछा है कि अब दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है राज्यों की।
कल मुझे ही दो अच्छे डॉक्टर मिले, दोनों वाइफ हस्बैंड थे, तो मैं उनको हंसी कर रहा था कि अब तो आपका प्रोफेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो कहा देखिए 80% बीमारियां मानसिक पीड़ा के कारण उत्पन्न हो रही हैं। तो कहने लगे अब तो आप लोगों की जरूरत होगी ज्यादा, हम लोग मेडिसिन दे दे के तो थक चुके हैं। और ये भी सत्य है कि मेडिसिन ज्यादा इफेक्ट भी नहीं कर रही हैं। ये एक दूसरा पहलू आजकल डॉक्टर्स के सामने आ खड़ा हुआ है कि मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो बहुत कम हो गया, रेस्पॉन्स बॉडी बहुत कम कर रहा है। इसका कारण है, मैं बिल्कुल ओपनली बताना चाहता हूँ, देखिए ब्रह्मचर्य में ही वो शक्ति थी जिसके कारण मनुष्य 100 साल तक निरोग जिया करता था, हमारे शास्त्रों में है ये बात। अब क्योंकि पवित्रता बिल्कुल मनुष्य ने नष्ट कर दी तो उसके शरीर में शक्ति भी नहीं रही है, जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, जो रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है, इसलिए दवाइयां बहुत काम नहीं कर रही। इसलिए शिव बाबा ने आकर प्योरिटी फिर से एस्टेब्लिश कर दी, मन में भी ताकत आए, बुद्धि भी स्वच्छ हो। देखिए अगर हम अपने मन को प्रसन्न कर लें, अगर हम अपने मन को बहुत लाइट कर दें, तो अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हमारे यहाँ कैड का प्रोग्राम चलता है, कैड का अर्थ होता है सिंपली हार्ट पेशेंट, बहुत सारे आते हैं हमारे यहाँ डॉक्टर हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, वो योग अभ्यास से और जीवन में कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करके, भोजन चेंज करके उनको ठीक करते हैं। मैंने भी देखा, मैं भी उसमें हूँ, तो आर्टरीज में ब्लॉकेज, 3-3 आर्टरीज में ब्लॉकेज और 5 दिन यहाँ रहने के बाद ब्लॉकेज खुल गए, चेक करने वाले बाकायदे वहीं रहते हैं। तो क्या सीखा, लाइट रहना, जिम्मेदारियों ने दबाव बनाया हुआ था ब्रेन पर, दिमाग फ्रेश ही नहीं था, कभी ये बोझ वो बोझ, जैसे गठरियां रखी हुई थी सिर पे, हार्ट अटैक हो गए, आर्टरी ब्लॉक हो गई। मन को प्रसन्न रखना, सत्यता के मार्ग पे चलना, पुण्य कर्म करना, इन सब से विचार सुंदर होंगे, हम लाइट रहेंगे और अनेक बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हार्ट में कुछ गड़बड़ हो भी गई है तो वो ऐसा प्रकोप नहीं बन जाएगा कि चल भी ना पाए, सीढ़ी भी ना चढ़ो, वो भी ना खाओ। तो कुछ ऐसा करना है कि डेली राजयोग मेडिटेशन किया जाए, आत्मा से प्योर एनर्जी पूरे बॉडी को दी जाए, पानी चार्ज करके पिया जाए और सवेरे हमारे यहाँ बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, सवेरे उठकर बहुत अच्छा परमात्म मिलन का अनुभव हो, ईश्वरीय महावाक्य सुने, तो सवेरे के 3-4 घंटे अपने को एनर्जेटिक कर दें। आत्मा ही शरीर का संचालन कर रही है मन बुद्धि के द्वारा, मन बुद्धि बहुत चार्ज हो गए तो बॉडी को आप ही चार्ज कर लेती है। हमारे पास अनुभव है बहुत सारे लोगों के जिन्होंने ज्ञान और योग की शिक्षा दी, मन प्रसन्न हुआ, बुद्धि हल्की हुई, टेंशन समाप्त हुई, जो बहुत सारी चिंताएं पाली हुई थी बिना मतलब की, वो समाप्त हुई और गोलियां भी समाप्त हुई। 20-20 गोली रोज खाते थे, अब गोली को गोली मार दी, बहुत खुश रहने लगे हैं। ये तरीका है स्वस्थ जीवन जीने का।
जी जी जी, शुक्रिया व्रता जी। पटेल जी, आपको तो कोई तकलीफ नहीं है, बीमारियां तो नहीं आपको? चलिए, आपने सभी के लिए पूछा, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ आए व्रता जी। पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों का जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं, आज सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देख के, लग रहा है कि आप लोग यूं ही हमारे साथ जमे रहें। अब प्रश्नों का सिलसिला उत्तर का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि सचमुच ज्ञान का बहुत ज्यादा वर्धन होता है इसमें। आप वहां भी बैठ के इसे देखते हैं, जब भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो और साथ ही जो अनुभव आते हैं आप हम तक अवश्य प्रेषित करते रहिएगा। आप यहां आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार चाहूंगा कि जोरदार अपने लिए तालियां करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अदाता जी आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप हमेशा हम सबको प्रकाश देते हैं, हम सबको आनंदित करते हैं और सचमुच जीवन बहुत सरल होता जा रहा है समाधान के माध्यम से। आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों आज हमारे साथ पूरा देश था और बहुत अच्छा लग रहा था। और समाधान परिवार तो अब देश में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में फैला हुआ है। विश्व के कोने कोने से भाई बहने हम तक अपने प्रश्न भी भेजते हैं, समस्या भी भेजते हैं और साथ ही अनुभव भी भेजते हैं। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जैसी हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुम्बकम की सारी वसुधा हमारा परिवार है, तो सचमुच ये समाधान परिवार ब्रह्म कुमारी परिवार पुनः सारे विश्व को एक सूत्र में पिरो रहा है। एक ही दिली कामना है, जैसे मैंने शुरुआत भी कही थी कि हे ईश्वर सबको कीमती घड़ी जरूर देना लेकिन कहीं भी कठिन घड़ी मत देना ताकि जीवन बहुत ज्यादा जटिल ना हो जाए। तो वास्तव में हमारी कामना ये रहती है कि आप मानसिक शारीरिक हर प्रकार की तकलीफों से मुक्त हों और जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं उन सभी समस्याओं से भी आप सहज रूप से मुक्त होकर एक समाधान युक्त जीवन जिएं। आप सबसे भी हमारा अनुरोध रहेगा कि न केवल अपने प्रश्न और समस्याएं यहां तक पहुंचाएं लेकिन खुद भी चल करके एक बार जरूर यहां आएं। आपसे मिलकर के हमें बेहद खुशी होगी। तो एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन बहुत सुखद हो, सरल हो, आनंदमय हो, दीजिए इजाजत अपने मित्र रूपेश को। अपना ध्यान रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कटनी संकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान समाधान।